नमस्कार भारत, तारीख 8 जनवरी, दिन सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनर ने किताब में छपे बयान को लेकर दी सफाई, मगर लेखक ने कहा व्हाइट हाउस के हालात हैं खराब।
He is not going to succeed. This is worse than everybody thought. It's not unreasonable.
आधार डेटा मामले में पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज, कई मीडिया संगठनों ने की निंदा।
सरकार यानी कि UIDAI, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक तरह से पत्रकार को धमकी दे रहे।
सुनाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी, होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने ट्रंप के कार्यकाल पर आई एक विवादित किताब में अपने हवाले से प्रकाशित टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया है। फायर एंड फ्यूरी नाम की इस किताब में बैनन ने राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर और रूसी अधिकारियों के समूह के बीच मुलाकात को देश विरोधी और विश्वासघाती कहा था। अब बैनन का कहना है कि उनकी ये टिप्पणी ट्रंप के पूर्व चुनाव अभियान प्रबंधक पॉल मैनफोर्ट के लिए थी, ना कि ट्रंप जूनियर के लिए। उन्होंने ट्रंप जूनियर को राष्ट्रवादी और अच्छा व्यक्ति बताया है। बैनन ने कहा है कि उन्हें पहले स्पष्टीकरण न देने का अफसोस है। इस विवादित किताब में ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए गए हैं, जिनका ट्रंप ने स्वयं को जीनियस और चतुर कहकर जवाब दिया है। पूर्वी चीन सागर में शनिवार को एक चीनी मालवाहक जहाज से टक्कर के बाद आग की लपटों में घिरा ईरानी तेल टैंकर अभी भी धधक रहा है। टैंकर से तेल का रिसाव हो रहा है, धुएं के घने बादलों और तेल की परत की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। चालक दल के 32 लोग अभी भी लापता बताए गए हैं। चीनी मालवाहक जहाज पर सवार सभी नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस तेल टैंकर में दक्षिण कोरिया के लिए 1,36,000 टन तेल ले जाया जा रहा था। तेल के रिसाव से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइमन बॉक्सॉल ने कहा, इस जहाज में 1,36,000 टन तेल था। यदि सारा तेल समुद्र में समा जाता है तो ये दुनिया भर में अब तक के 10 सबसे बड़े तेल रिसाव में शामिल हो जाएगा। इससे पर्यावरण को भीषण नुकसान हो सकता है। यदि हम कोई सकारात्मक बात देखें तो एक ही बात है, वो ये कि हवाएं तेल को तट की ओर से दूर ले जा रही हैं, जो कि बहुत दूर है। सरकार के सब्सिडी खत्म करने के बाद सूडान में ब्रेड के दाम दोगुने हो गए हैं, जिनका जमकर विरोध हो रहा है। पश्चिमी दारफूर में प्रदर्शनों में हुई हिंसा में एक प्रदर्शनकारी छात्र की मौत हो गई है, जबकि 6 घायल हैं। राजधानी खरतूम में दंगारोधी पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है। एक कनिष्ठ मंत्री ने प्रदर्शनों को महंगाई से जोड़े जाने का खंडन करते हुए कहा है कि विरोध को कुचल दिया जाएगा। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए ब्रेड के दाम दोगुने करने का फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी सूडान से अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाने की अपील की है। मिस्र के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शफीक का कहना है कि वो इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के लिए सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा था। हाल ही में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में रहते हुए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके कुछ ही दिन बाद अमीरात की सरकार ने उन्हें मिस्र वापस भेज दिया था, जहां से वो गायब हो गए थे। बाद में सामने आने पर उन्होंने अपने अपहरण के कयासों को खारिज कर दिया था। बीबीसी की चीनी सेवा के संपादक कैरी ग्रेसी ने महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान वेतन को मुद्दा बनाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक खुले पत्र में ग्रेसी ने कहा है कि वो अपने पूर्व पद पर वापस लौट रही हैं। बीबीसी का कहना है कि संस्थान में महिलाओं और पुरुषों के वेतन में कोई प्रणालीगत गैर बराबरी नहीं है। इसराइल का कहना है कि वो गाजा पट्टी को दी जाने वाली बिजली को फिर से बहाल कर देगा। बीते साल गर्मियों में फलस्तीनी प्रशासन के बिजली बिलों के भुगतान रोक देने के बाद इसराइल ने गाजा पट्टी की बिजली काट दी थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाने वाली किताब फायर एंड फ्यूरी की अमरीका में चर्चा जारी है। अब उनके सलाहकार स्टीव बैनन ने अपने उन बयानों के लिए स्पष्टीकरण दिया है जिनका जिक्र इस किताब में किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए विरोधी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए न्यूयॉर्क सिटी से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
पिछले 5 दिनों से अमरीका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी राष्ट्रपति के पद के लिए सलाहियतों के बारे में विवादित किताब फायर एंड फ्यूरी की चर्चा जारी है। टीवी न्यूज चैनलों पर इसी सिलसिले में सवालात किए जा रहे हैं।
What would you say about a world leader who refers to himself as a very stable genius?
Chris, I'm not going to dignify that question with a response.
एक टीवी इंटरव्यू में CIA के डायरेक्टर माइक पोम्पियो एक सवाल का जवाब देने से इनकार कर रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया था कि वो ऐसे किसी विश्व नेता को क्या कहेंगे जो अपने आप को बेहद जीनियस कहता हो। CIA के डायरेक्टर ने यह जरूर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमरीका को विश्व में आगे ले जा रहे हैं और देश को सुरक्षित रखने में सबका नेतृत्व कर रहे हैं। फायर एंड फ्यूरी नामक इस किताब में राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार रहे स्टीफन बैनन समेत व्हाइट हाउस के कई अधिकारियों के हवाले से राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में और उनके परिवार के बारे में विवादित बयान दर्ज किए गए हैं। लेखक माइकल वुल्फ ने डोनाल्ड ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि वो राष्ट्रपति के ओहदे के काबिल नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने मानसिक स्वास्थ्य पर उठे सवालों को खारिज करते हुए कहा है कि ये किताब कोरी कल्पना है और उसका लेखक धोखेबाज है। अब स्टीफन बैनन ने एक समाचार वेबसाइट एक्सियोस को एक बयान जारी करके इस बात की माफी मांगी है कि उन्होंने राष्ट्रपति के बेटे डॉन जूनियर की रूसियों के साथ बैठक को लेकर डॉन जूनियर को देशद्रोही कहा था। बैनन ने बयान में यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का एजेंडा आगे बढ़ाने में मदद करें। स्टीव बैनन को राष्ट्रपति ट्रंप ने सलाहकार के पद से पिछले साल अगस्त महीने में हटा दिया था। किताब में उनके हवाले से कही गई बातों के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि बैनन का दिमाग खराब हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी लिखा था कि वो एक बेहद स्मार्ट और जीनियस व्यक्ति हैं, लेकिन खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कम से कम 2 सेनेटरों ने डोनाल्ड ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य और अमरीकी राष्ट्रपति पद के लिए उनकी सलाहियतों पर सन 2016 की चुनावी मुहिम के दौरान भी सवाल उठाए थे। सेनेटर रैंड पॉल और सेनेटर लिंडसी ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप को आलोचना का निशाना बनाते हुए कहा था कि वो बेवकूफ हैं और राष्ट्रपति पद के काबिल नहीं हैं। पत्रकारों ने ट्रंप प्रशासन के सदस्यों से भी इस सिलसिले में सवाल किए हैं। विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से राष्ट्रपति ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक टीवी इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उनका जवाब था, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य पर कभी सवाल नहीं उठाए और मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाऊं। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के शब्द। वहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष की डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादातर कांग्रेस सदस्य ये मान चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के ओहदे के लिए काबिलियत नहीं रखते हैं। कांग्रेस में कम से कम 57 डेमोक्रेट सदस्यों ने निचले सदन में एक बिल पेश किया है जिसमें मांग की गई है कि राष्ट्रपति ट्रंप की सलाहियत की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया जाए। फायर एंड फ्यूरी के लेखक माइकल वुल्फ ने रविवार को एक टीवी इंटरव्यू में फिर चेताया कि ट्रंप व्हाइट हाउस में हालात बेहद खराब हैं और 25वें संशोधन की ओर हालात बढ़ रहे हैं।
He is not going to succeed. This is worse than everybody thought. It's not unreasonable to say this is 25th amendment kind of stuff.
अमरीकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत अगर कांग्रेस द्वारा गठित कोई आयोग अमरीकी राष्ट्रपति के बारे में ये फैसला दे दे कि वो अपने ओहदे की जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाहियत नहीं रखते तो राष्ट्रपति के अधिकार उपराष्ट्रपति को दिए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इससे पहले कभी भी ऐसा कोई आयोग गठित नहीं किया है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन ने फायर एंड फ्यूरी किताब में छपे अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। बात करते हैं इसराइल की, जिसने 20 ऐसी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के अपने देश में आने पर रोक लगा दी है जिन पर इसराइल के बहिष्कार के लिए आंदोलन चलाने का आरोप है। ये संगठन BDS अभियान का समर्थन करते हैं। क्या है मामला, विस्तार से जानने के लिए BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
इसराइल ने 20 संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन संस्थाओं पर इसराइल का बहिष्कार करने के आरोप हैं। दुनिया भर के जिन संस्थानों को प्रतिबंधित किया गया है वो बायकॉट डाइवेस्ट सैंक्शन मूवमेंट यानी BDS अभियान के समर्थक हैं। BDS का कहना है कि वो फलस्तीनियों के शोषण को खत्म करने के लिए काम करता है। जिन समूहों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें यहूदी संगठन वॉयस फॉर पीस भी शामिल है। समूह की निदेशक रिवेका विलकोमर्सन का कहना है कि इसराइल का आंदोलन को खामोश करने का यह कदम कारगर नहीं होगा। न्यूयॉर्क से बात करते हुए रिवेका ने कहा,
The tool of boycott, divestment, sanctions is one that's been used historically across many, many...
BDS आंदोलन के समर्थकों पर इसराइल आगमन पर प्रतिबंध लगाकर अब ये स्पष्ट हो गया है कि इसराइल पर दबाव बनाने में BDS कारगर सिद्ध हो रहा है और इसराइल इस दबाव को महसूस कर रहा है और यही BDS आंदोलन का मकसद भी है। ऐसे में ये प्रतिबंध आंदोलन को मजबूत ही करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि इसराइल BDS से निपटने में करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है। इससे हमें यही संकेत मिलता है कि BDS अपने मकसद की दिशा में सही काम कर रहा है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय में डिप्टी मंत्री माइकल ओरेन का कहना है कि ये समूह इसराइल की बर्बादी के लिए काम कर रहे हैं। BBC से बातचीत में उन्होंने कहा,
These are organizations that realize that attempts to destroy Israel by conventional means, the Arab-Israeli wars...
ये संगठन जिन्हें एहसास हो गया है कि इसराइल को बर्बाद करने के पारंपरिक तरीके जैसे कि अरब इसराइल युद्ध जो 1973 में खत्म हो गया, इसराइल के खिलाफ आतंकवाद जो अब भी जारी है लेकिन बीते सालों के मुकाबले में काफी कम हो गया है, ये प्रयास नाकाम हो गए हैं। इसराइल को बर्बाद करने का नया प्रयास कानूनी और आर्थिक तरीके से है जो कि बहुत गंभीर है। ये 21वीं सदी का युद्ध है और ये बहुत खतरनाक है। हम इस प्रयास को इतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं जितनी गंभीरता से हमने इसराइल को बर्बाद करने के पुराने प्रयासों को लिया है। BDS आंदोलन इसराइल में निवेश का विरोध करता है और इजरायली कंपनियों के बहिष्कार की दुनिया भर में अपील करता है। कार्यकर्ता ऐसा करके सरकारों पर इसराइल के साथ संबंध सीमित करने के लिए दबाव बनाते हैं। आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता दुनिया भर के शहरों में प्रदर्शन भी आयोजित करते हैं। इसराइल और फलस्तीनियों के बीच विवाद हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के अपने दूतावास को यरूशलम लाने के फैसले के बाद और बढ़ गया है।
दिलनवाज पाशा बता रहे थे कि इसराइल ने किन 20 संस्थाओं को और उनके कार्यकर्ताओं को अपने देश में आने पर रोक लगा दी है। कथित तौर पर आधार से संबंधित जानकारी कुछ रुपयों में उपलब्ध होने से जुड़ी एक खबर करने पर दिल्ली पुलिस ने द ट्रिब्यून अखबार की एक पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये FIR आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI की शिकायत के बाद की गई, जिसके बाद मीडिया के कई समूहों ने इस FIR की निंदा की है। BBC संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
4 जनवरी को चंडीगढ़ से छपने वाले अखबार द ट्रिब्यून में खबर छपी कि 500 रुपए में और 10 मिनट के अंदर आधार कार्ड से संबंधित अरबों जानकारियां पाई जा सकती हैं। ये खोजी रिपोर्ट अखबार की एक पत्रकार रचना खेरा ने की थी। खबर में दावा किया गया था कि एक एजेंट की मदद से मात्र 500 रुपए खर्च करके किसी भी व्यक्ति के बारे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI को दी गई सारी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। इस खबर के प्रकाशन के बाद महिला पत्रकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा है,
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 5/1/2018 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने साइबर सेल में एक कंप्लेन दर्ज कराई थी। ये कंप्लेन शिकायत निवारण प्रणाली के उल्लंघन के बारे में अखबार दी ट्रिब्यून में छपी एक खबर से संबंधित थी। इसके बाद प्राधिकरण की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। शिकायत में केवल उस रिपोर्टर के नाम का जिक्र है जिन्हें कथित रूप से जानकारी तक पहुंच मिली थी। शिकायत के आधार पर इस मामले में अब जांच शुरू कर दी गई है और फिलहाल पासवर्ड शेयर करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में क्राइम ब्रांच में आधार कानून की धारा 3637, भारतीय पिनल कोड की धारा 419, 420, 468 और 471 और IT एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच फिलहाल जारी है।
FIR 5 जनवरी को दर्ज की गई, लेकिन इसके बारे में कल मालूम चला, जिसके बाद मीडिया और पत्रकारों से जुड़े विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहला बयान फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल की तरफ से आया और इसके अध्यक्ष प्रंजोय गुहा ठाकुरता ने कहा,
ये खतरनाक है। एक तरह से सरकार यानी कि UIDAI यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक तरह से पत्रकार को धमकी दे रहे। ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन्होंने किया, ट्रिब्यून का जो पत्रकार है वो अपना काम कर रहे थे।
वहीं द ट्रिब्यून अखबार ने भी अपनी खबर और पत्रकार का पक्ष लिया है। अखबार के प्रधान संपादक हरीश खरे ने बयान जारी कर कहा,
मेरे साथी और मैं मीडिया के विभिन्न संगठनों और पत्रकारों की तरफ से दिखाए जा रहे समर्थन और एकता के लिए आभारी हैं। द ट्रिब्यून में हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारी खबरें वैध तरीके से की जाती हैं, हमारी खबरें जिम्मेदारी भरी पत्रकारिता की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं, हमारी खबर आम लोगों के हितों से जुड़ी एक बेहद गंभीर समस्या पर आधारित थी। हमें इस बात का खेद है कि संबंधित अधिकारियों ने ईमानदार निष्ठा से की गई पत्रकारिता को गलत तरीके से लिया, अपनी खोजी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने और आज़ादी की रक्षा के लिए जितने भी कानूनी रास्ते हमारे पास मौजूद हैं हम उन सभी का उपयोग करेंगे।
इसके अलावा एडिटर्स गिल्ड एसोसिएशन, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन समेत कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी एफआईआर की निंदा की है। वहीं इतनी आलोचनाओं के बाद आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने भी अपने फैसले का बचाव करते हुए प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि वो मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और ट्रिब्यून की पत्रकार के खिलाफ उनकी तरफ से की गई एफआईआर मीडिया पर हमला नहीं है। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
तमिलनाडु में चल रही सार्वजनिक परिवहन निगम की हड़ताल पर मद्रास हाईकोर्ट आज ये फैसला सुना सकता है कि इस हड़ताल का जारी रहना न्यायालय की अवमानना है या नहीं। विपक्षी डीएमके और लेफ्ट पार्टियों से संबंधित ट्रेड यूनियनों की तरफ से बुलाई गई हड़ताल के कारण 70% बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसका नुकसान यात्रियों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि टैक्सी और ऑटो रिक्शा वाले मनमर्जी से किराया वसूल रहे हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
हरिशंकर एक आईटी कंपनी में काम करते हैं जो हर रोज बस के जरिए अपने ऑफिस जाते हैं। पिछले 5 दिनों से उनके परिवहन का खर्च दुगने से भी ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा,
We have frequent cab or share auto from Medavakkam to Velachery.
हम हर रोज शेयर ऑटो से मेडावाकम से वेलेचेरी जाते हैं और वेलेचेरी से आगे के लिए दफ्तर को बस से जाते हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से हमारा खर्च बढ़ गया है क्योंकि ऑटो रिक्शा महंगा हो गया है और बस नहीं होने के कारण हमें कई समय खासकर रात के वक्त टैक्सी लेनी पड़ती है और 10 बजे के बाद टैक्सी बुलवाने से आपको सर्च प्राइसिंग देना पड़ता है, तो हर रोज का खर्च बढ़ गया है। ये थे हरिशंकर। बस स्ट्राइक पर ट्रेड यूनियंस और मैनेजमेंट ने अलग अलग बयान दिए हैं। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि मैनेजमेंट जो पैसा कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड जैसे आवश्यकताओं के लिए वेतन से काटा था वो रिटायरमेंट के कई साल होने पर भी नहीं दिया है। CITU के ए सौंदर राजन ने कहा,
बेसिक डिमांड इज वन दोज हु रिटायर्ड शुड बी गिवन देयर टर्मिनल बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, पेंशन कम्यूटेशन, दी लीव एनकैशमेंट केसेस।
परिवहन कॉर्पोरेशन जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी इत्यादि के लिए पैसा कर्मचारियों के वेतन से काटती थी वो उन अकाउंटों में डिपॉजिट ही नहीं की है। इसके वजह से करीब 5,000 कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलना था वो मिला नहीं है। हर कर्मचारी को करीब 15 लाख रुपये मिलना है। हमारी दूसरी मांग है कि वेतन को दूसरे सरकारी संस्थाओं की तरह बढ़ाना चाहिए। ये थे ए सौंदरराजन के शब्द। लेकिन सरकार का कहना कुछ और ही है। सरकार कह रही है कि उसने 23 बैठकों के बाद वेतन पे ट्रेड यूनियंस के साथ बातचीत खत्म कर ली है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट PWC दावेदार ने कहा,
Well, actually the issue is settled in the sense that the wage settlement talks have been held over the last 1.5 years.
वेतन सेटलमेंट तो 4 जनवरी को खत्म हो गया। इस पर जो ट्रेड यूनियंस को बहुमत है वो साइन भी कर दिए हैं। जिन ट्रेड यूनियंस को बहुमत नहीं है वो वॉकआउट कर दिए। ड्राइवर का वेतन 2700 से 10,500 तक बढ़ा है। कंडक्टर, टेक्निकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का वेतन भी इसी तरह बढ़ा है। ये थे PWC दावेदार के शब्द। दरअसल मामला सियासी है। जो ट्रेड यूनियन वेतन पर सरकार से हां में हां मिला रही है वो सत्तारूढ़ अन्ना डीएमके का है। इस स्ट्राइक का इतने दिन चलना ही अन्ना डीएमके सरकार की कमजोरी दिखाने लगी है, खासकर जब आम लोग तकलीफ में पड़ गए हैं। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज, क्या कह रहे हैं अखबार आज?
जी, आज के सभी हिंदी अखबारों में एक प्रमुख खबर है, उत्तर प्रदेश में बिना परमिशन के लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। और इसी खबर पर पंजाब केसरी कह रहा है, उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हट जाएंगे। बहुत से लोगों को शिकायत थी कि जो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर बजते हैं उनके शोर से उन्हें परेशानी होती है। इसी पर सरकार का कहना है कि फैसले को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाए और ये कार्रवाई सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर की जाएगी।
जी।
इसके अलावा इंदौर की एक खबर थी, आपको याद होगा, एक DPS की स्कूल बस का हादसे का शिकार हुई, उसमें कई स्कूली बच्चों की मौत हो गई। नई दुनिया ने आज एक तस्वीर प्रकाशित की है पहले पन्ने पर। एक टेम्पो सड़क पर जा रहा है, इसके पीछे मैंने 15
स्कूली बच्चों को लटके हुए गिन लिया है और ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। तो यातायात की जो समस्या स्कूली बच्चों के सामने आती है उसको इस तस्वीर के जरिए उठाया गया है। हिंदुस्तान अखबार की एक खबर के मुताबिक दिल्ली के जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके लिए भर्ती के समय ही मरीज पर खर्च आता है वो बताना जरूरी हो जाएगा, ऐसा प्रस्ताव दिल्ली की सरकार ला सकती है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना लाने पर विचार कर रही है जिससे पेंशन और इंश्योरेंस कवर मिलेगा उन लोगों को जो अभी तक EPFO या ESIC के दायरे में नहीं आते हैं। इसको एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज। और अब समय है पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी का।
कैसी अच्छी बात है कि हिंदी उर्दू फिल्में पिछले 104 वर्ष में जिनों भूतों परियों की दुनिया से निकल के जालिम और मजलूम की लड़ाई करवाते करवाते अमीर लड़की और गरीब लड़के की प्रेम कहानी में विलन के अड़ंगे से बचते बचाते विभाजन की ट्रेजेडी से गुजर के दुश्मन देश को नाकों चने चबवाने के बाद अब लड़कपन से प्रौढ़ता की उम्र में दाखिल हो रही है। आमिर खान ने पिछले 10 वर्ष में 3 Idiots, तारे ज़मीन पर, पिपली लाइफ, PK, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार तक जो फिल्में बनाई और अक्षय कुमार और उनके सहयोगियों ने जिस तरह एयरलिफ्ट, टॉयलेट एक प्रेम कथा और अब पैडमैन के रूप में खेल खेल में जागरूकता को आम करने का जो बीड़ा उठाया है, या फिर सुलगते बुद्धों को लेके जिस तरह से मिनराल सेन, संजय काक, आनंद पटवर्धन, नंदिता दास, मीरा नायर और इन जैसे 20 लोगों ने जो अद्भुत काम किया है और उनकी रिवायत को लेके नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां 3 से 20 मिनट तक की फिल्में और डॉको ड्रामे बना के लोगों के दिलों में जिस तरह जगह बना रहे हैं और एक खामोश इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब और इनकी कोशिशों को एक लंबा सलाम करना तो बनता है। देखा जाए तो फिल्म भी किसी और कारोबार की तरह ही है। प्रोड्यूसर इसलिए पैसा लगाता है क्योंकि वो कमाना चाहता है, लेकिन अब ये तय करने का समय आ गया है कि जो भी प्रोडक्शन हाउस 100 करोड़ के क्लब में दाखिल हो उसे हर ऐसी एक फिल्म के बाद किसी भी बड़े या मामूली सामाजिक मुद्दे पे कम से कम एक फीचर फिल्म ज़रूर बनाना चाहिए जिसमें नफ़ा नुकसान को करारे बॉक्स ऑफिस नोटों की बजाय समाज पे उसके असर के तराजू में तोला जाए। इंडिया हो के पाकिस्तान, यहाँ के करोड़ों लोगों की किताब पढ़ने या लंबे लंबे समाज सुधार भाषण हजम करने में कोई ख़ास रुचि नहीं, अलबत्ता फिल्में सभी देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में एक अच्छी फिल्म 1,000 किताबों और 10,000 भाषणों से बेहतर रोशनी पैदा कर सकती है। मीडिया के घेरे में आया आज का समाज अगर कोई बात ध्यान से सुनता है तो किसी दिग्गज खान टीवी एंकर की नहीं बल्कि अच्छे स्क्रिप्ट वाले फिल्म मेकर की। वो फिल्म मेकर जो कहानी ऐसे सुनाए कि सिनेमा की सीट से उठने वाला हर शख्स ये सोचता हुआ घर जाए, यही तो मैं भी कहना चाहता था। आज जो हालात हैं इनमें फिल्म की सॉफ्ट पावर ही हार्ड पावर को नीचा दिखा सकती है और दिमाग के बंद रोशनदान खोल सकती है। बाकी सब तो आजमाए जा चुके हैं।
वसतुल्ला खान की डायरी आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। अब सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है, जहां दक्षिण अफ्रीका के पास दूसरी पारी में 142 रनों की बढ़त है और उसके 8 विकेट बाकी हैं। कैगिसो रबाडा 2 और हाशिम आमला 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं, लेकिन कल खेल का तीसरा दिन तो बारिश में ही धुल गया, यहाँ तक की एक भी गेंद नहीं की जा सकी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 286 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम भी केवल 209 रन बना सकी। वो तो हार्दिक पांड्या ने 93 रन बनाकर भारत को वापसी की राह दिखाई। पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को 77 रनों की बढ़त मिली, जबकि दूसरी पारी में उसने 2 विकेट खोकर 65 रन बनाए हैं। और अब समीक्षा, क्या हार्दिक पांड्या के रूप में भारत को दूसरा कपिल देव मिल गया है? भारतीय क्रिकेट में यूं तो ढेरों ऑलराउंडर हुए हैं, लेकिन जब भी विश्व स्तरीय ऑलराउंडर की बात होती है तो कपिल देव का नाम सबसे पहले जहन में आता है। इमरान खान, यान बोथम और रिचर्ड हेडली के साथ उनका नाम हमेशा दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में शामिल होता रहा है। उनसे किसी और की तुलना करना आसान नहीं है। लेकिन पिछले शनिवार 6 जनवरी को जब कपिल देव का जन्मदिन था और भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन 81 रन पर 6 विकेट खोकर महासंकट की स्थिति में था, ऐसे में हार्दिक पांड्या ने पिच पर उतरकर केवल 95 गेंदों पर 14 चौके और 1 छक्के की मदद से 93 रन ठोककर भारत को सम्मानजनक 209 रन के स्कोर तक पहुंचाने में मदद की और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के दोनों सलामी बल्लेबाजों को अपनी तेज गेंदों के दम पर पेवेलियन पहुंचाया तो पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी ये कहे बिना नहीं रह सके।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैप्पी बर्थडे टू कपिल एंड ही वुड बी वेरी हैप्पी सीइंग द वे हार्दिक पांड्या इज कमिंग थ्रू। व्हाइल देयर विल ऑलवेज बी जस्ट वन कपिल देव, द वे हार्दिक पांड्या इज प्रोग्रेसिंग इज एनकरेजिंग साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट। देयर इज नो पॉइंट हैविंग कंपैरिजंस, बट द वे ही इज प्रोग्रेसिंग आई थिंक यू नो इट्स फैंटास्टिक फॉर इंडियन क्रिकेट।
गावस्कर का मानना है कि कपिल तो अकेले ही हैं और उनकी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या आगे बढ़ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। अब जरा हार्दिक पांड्या के आंकड़ों पर भी नजर डाल लें। उन्होंने 32 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 4 अर्धशतक की मदद से 602 रन बनाए हैं और 35 विकेट झटके हैं, जबकि 27 ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 154 रन बनाए हैं और 23 विकेट हासिल किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में तो वो अभी अपना 4th मैच ही खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो 1 शतक और 2 अर्धशतक भी जमा चुके हैं। खुद हार्दिक पांड्या मानते हैं कि बल्ले से ना चलो तो गेंद से कुछ करो।
If I'm not doing well in my batting, I still have something. I mean, I still have bowling to cope up with it and chip in, you know, do something for the team.
जब टीम के लिए ऐसा जज्बा रखने वाले खिलाड़ी हों तो भला कप्तान भी उनके बिना कैसे मैदान में उतरे।
It's very hard to find people with that kind of ability. You know, people should appreciate his skill and what he brings to the table. I think he can go down as one of the most accomplished Indian cricketers.
ऐसे खिलाड़ी आसानी से नहीं मिलते और वो संपूर्ण भारतीय खिलाड़ी हैं, कहना विराट कोहली का। आप सुनते हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन हार्दिक पांड्या और कपिल देव की तुलना को लेकर क्या कहते हैं।
मेरा मानना यह है कि हार्दिक पांड्या में बहुत अच्छा पोटेंशियल है एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर बनने के लिए, क्योंकि उनमें एक विकेट टेकिंग एबिलिटी है। बैटिंग में बनता है कंपैरिजन कपिल देव के साथ, क्योंकि उन्हीं की तरह वो फ्रीली खेलते हैं, स्ट्रोक्स वो डरते नहीं है, लॉफ्टेड शॉट भी खेल लेते हैं, सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत जबरदस्त है, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बहुत अच्छा है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है। लेकिन कपिल देव जो थे वो मास्टर थे, मास्टर फास्ट बॉलर, और उम्मीद तो यही है कि प्रोग्रेस करेंगे हार्दिक पांड्या और बेमिसाल ऑलराउंडर अपने तौर पर ही बनके निकलेंगे।
उधर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर अपनी गिरफ्त बेहद मजबूत कर ली है। सिडनी में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच के 4th दिन कल जब खेल समाप्त हुआ तब इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 93 रन बनाए थे। इंग्लैंड को पारी की हार से बचने के लिए अभी भी 210 रनों की जरूरत है। वहीं टेनिस के कोर्ट पर साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन से ठीक पहले ब्रिस्बेन ओपन को अभ्यास कहें या फिर हाथ खुलने का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट माना जाता है, और ब्रिस्बेन ओपन को कल पुरुष एकल वर्ग में 3री वरीयता हासिल ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस ने बेहद आसानी से अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने अमरीका के रियान हैरिसन को 6-4, 6-2 से मात दी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और अंत में मुख्य समाचार दिलनवाज पाशा से।
पूर्वी चीन सागर में शनिवार को एक चीनी मालवाहक जहाज से टक्कर के बाद आग की लपटों में घिरा ईरानी तेल टैंकर अभी भी धधक रहा है और चालक दल के 32 लोग अभी भी लापता हैं। सरकार के सब्सिडी खत्म करने के बाद सूडान में ब्रेड के दाम दोगुने हो गए हैं, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। पश्चिमी दारफूर में प्रदर्शनों में हुई हिंसा में एक छात्र की मौत हो गई है जबकि 6 घायल हैं। बीबीसी की चीनी सेवा की संपादक कैरी ग्रेसी ने महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान वेतन को मुद्दा बनाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसराइल का कहना है कि वो गजा पट्टी को दी जाने वाली बिजली को फिर से बहाल कर देगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में इतना ही। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।